హరతీహారమోత్తమం హరిసుదర్శనం చక్రం తత్పత్న్యవ్యాహతాం శ్రియం బ్రహ్మా బ్రహ్మమయం వరమ భారతీహారమోత్తమం హరిసుదర్శనం చక్రం తత్పత్న్యవ్యాహతాం శ్రియం
चक्र तत्पत्नी उनकी पत्नी लक्ष्मी ने अव्याहतम अविचल श्रियम सुंदरता तथा ऐश्वर्य अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। श्री ब्रह्मा ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। ब्रह्मा की पत्नी भारती सरस्वती ने दिव्य हार दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सभी देवताओं ने राजा पृथु को तरह तरह की भेंटें दी। हरि ने जो श्री भगवान के अवतार है और उपेंद्र कहलाते हैं राजा को सुदर्शन चक्र भेज दिया। स्मरण रहे कि यह सुदर्शन चक्र श्री भगवान कृष्ण या विष्णु का सुदर्शन चक्र नहीं है, क्योंकि महाराज ऋतु श्री भगवान के अंश रूप थे, अतः उन्हें जो सुदर्शन चक्र भेंट में दिया गया वह मूल सुदर्शन चक्र की आंशिक शक्ति से युक्त था। नमोम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ते वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में श्रीमद् भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण करना भक्ति में बहुत बड़ा बल है। परम करुणा वरुणालय कलयुग पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए भक्ति के 64 अंग का वर्णन करते हैं और उन भक्ति के सभी अंगों में 5 अंग मुख्य अंग बताते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की तीर्थ स्थान में वास करना, साधु वैष्णव का संग करना और भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना, ये 5 साधनों में मुख्य साधन श्रीमद् भागवत का श्रवण है। और इस श्रीमद् भागवत को किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। कहते हैं भागवत अर्था स्वादन, भागवत के प्रति श्लोक के प्रति पद के और प्रत्येक शब्दों का अर्थास्वादन करना चाहिए। यदि भागवत के प्रत्येक शब्द का अर्थास्वादन किया जाए तो बहुत जल्द भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। ये भागवत भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला ग्रंथ है और ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की हम पर असीम कृपा है कि उन्होंने अपने सभी सेंटरों में प्रतिदिन इस भागवत श्रवण करने का अवसर प्रदान किया है। तो आइए प्रभुपाद जी की इस असीम अनुकंपा का, इस कृपा का हम लाभ उठाए। प्रस्तुत प्रसंग से आप सब लोग अवगत हो, यहाँ पर भागवत के चतुर्स्कंध के 15वें अध्याय में महाराज पृथ्वी की कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं। आगे आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार वैण अंग का एक दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वैण, और सभी ऋषि मुनियों ने श्राप देकर वैण का वध किया और उनके शरीर का मंथन करके पृथु और अर्ची का जन्म हुआ। जब पृथु का जन्म हुआ तब मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े देवता महाराज पृथु को उपहार भेंट देने आए। आगे श्रवण किया कि सोभी व्यक्तो महाराज सुवासा साधवलंकृत। महाराज पृथु का जन्म होते ही उनका अभिषेक किया और सुंदर सुंदर वस्त्रों से उन्हें सज्जित किया गया। सुवासा साधवलंकृत और उसी के साथ साथ अलंकृत बहुत सुंदर सुंदर आभूषण भेंट दिए गए। पत्नियार्ची शालंकृतिया वरेजे अग्नि रिवा पर। और इस प्रकार से पृथु और उनकी पत्नी को सुंदर वस्त्र पहनाकर जब राज सिंहासन के ऊपर बिठाया गया तो मानो अग्नि की लपट अग्नि के शिखा की तरह ये पृथु और अर्ची चमक रहे थे। तस्मे जहार दनदो हेमम वीर वरासनम। और उस समय इस संसार के सबसे बड़े केशियर कुबेर जी हेममयी आसनम सोने का सिंहासन लेकर आए। कुबेर जी ने सोचा कि यह राजा आगे चलकर पृथ्वी का पालन करने वाला है, यह वैण के समान नहीं है, इसलिए यह लकड़े के सिंहासन के ऊपर बैठे यह ठीक नहीं है। साक्षात धन के देवता कुबेर जी स्वर्ग से हेममयी सोने के सिंहासन को लेकर आए और पृथु महाराज को प्रदान किए। वरुण सलिला श्रावम तपत्रम शशि प्रभम। और वरुण समुद्र के देवता वरुण ने कुबेर जी को पृथु महाराज को एक छाता प्रदान किया और उस छाते की छतरी की विशेषता यह थी कि उस छाता से पानी का शोर निकलता था। और इतना ही नहीं, यह छाता चंद्रमा के समान चमक रहा था। वायुश्च वाल व्यजने धर्म कीर्ति मई सृजम इंद्र कीर्ति मुत्कृत्यम दंडम संयम यम। और उसी समय वायुदेव वहां पर उपस्थित हुए और वायुदेव ने दो चामर प्रदान किए जिसके द्वारा पृथु महाराज को हवा डाला जाए। और धर्मराज ने एक बहुत सुंदर माला प्रदान की जो माला पृथु महाराज का यश बढ़ाने वाली थी। इंद्र कीर्ति मुत्कृष्टम। और अनंत 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा इंद्र ने साक्षात वहां पर प्रकट होकर पृथु महाराज को सोने का किरीट अर्थात मुकुट पहनाए। दंडम संयम मन यम। और साक्षात यमराज जी वहां पर उपस्थित होकर पृथु महाराज को एक दंड प्रदान किया और उन्हें निवेदन किया कि आप इस दंड से इस समग्र पृथ्वी पर शासन प्रदान करो, समग्र पृथ्वी का शासन करो। इस प्रकार से बड़े बड़े देवतागण वहां पर आते गए, पृथु महाराज को भेंट देते गए। और आज कौन आए हैं, आज के श्लोक में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा ब्रह्ममयम वरम। कहते हैं कि ब्रह्मा जी पधारे हैं, परंतु प्रश्न होता है कि कौन से ब्रह्मा पधारे हैं। हमारे आचार्य गण इस श्लोक के ऊपर बहुत बहुत टीका है, बहुत अपना मंतव्य लिखे हैं। प्रभु जी का कल फोन आया तो मैंने टीका के ऊपर दृष्टि की तो वीर राघव आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्ममयम वर्म, ब्रह्मा ने वर्म का अर्थ होता है कवच प्रदान किया, परंतु कौन से ब्रह्मा ने प्रदान किया। चैतन्य चरितामृत में कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए पधारे। द्वारका के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा कि बताओ आपको किसका काम है। ब्रह्मा जी ने कहा कि किसका काम है, कृष्ण का काम है। द्वारपाल ने पूछा कि आप कौन हो। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं जानते हो, मैं ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा कि आप यहां पर खड़े रहो, हम भगवान से पूछकर आते हैं। तो द्वारका के द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कृष्ण को कहा कि बाहर कोई व्यक्ति आया है और अपने आप को ब्रह्मा कह रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जान गए कि ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ है, अहंकार हुआ है। ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट करने के लिए कृष्ण ने द्वारपाल को कहा कि जाओ उसे पूछो कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान कृष्ण के द्वारपाल दरवाजे के पास आए और ब्रह्मा जी को पूछे कि भाई आप कौन से ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कौन से ब्रह्मा, इस संसार में ब्रह्मा 10-15 है क्या, ब्रह्मा चार मुख वाला ब्रह्मा आया है बताओ। द्वारपाल दूसरी बार भगवान के पास गया और भगवान को कहने लगा कि चार मुख वाले ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है उसे अंदर एंट्री कर दो, एंटर करा दो। जैसे चार मुख वाले ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पधारे तो उन्होंने देखा कि उसके पहले वहां पर 8 मुख वाले ब्रह्मा जी खड़े हैं, कुछ ब्रह्मा के 10 मुख है, किसी ब्रह्मा के 100 मुख है और किसी के 500 मुख है। ये 4 मुख वाले ये सारे अनंत अनंत मुख वाले ब्रह्मा को देखकर चक्कर में आ गए, बेहोश होकर गिर गए और तब जाकर ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ अरे बाप रे मैं तो केवल 4 ही मुख वाला ब्रह्मा हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े ब्रह्मा यहाँ पर है। तात्पर्य यह है कि एक ब्रह्मा नहीं, जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने के लिए अनंत ब्रह्मा भी है। और हमारे इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है वे 4 मुख वाले ब्रह्मा है। इसका अर्थ है कि हमारे इस ब्रह्मांड की साइज बहुत छोटी है, इस ब्रह्मांड से और जितने जितने ब्रह्मांड है वे बहुत बड़े बड़े हैं। इसलिए उस बड़े बड़े ब्रह्मांडों को चलाने के लिए ब्रह्मा जी के मुख सिर 8 है, किसी के 10 है, किसी के 50-100 है। तो यहाँ पर वीर राघव आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि इतने सारे ब्रह्मा है तो पृथु महाराज को वर्म कवच प्रदान करने के लिए कौन से ब्रह्मा आए थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का आस्वादन करना चाहिए, तो आचार्यगण इस शब्द का आस्वादन करते हुए कहते हैं, वीर राघव उत्तर देते हैं ब्रह्मा चतुर्मूर्ख। पृथु महाराज को वर्म कवच प्रदान करने के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा आए थे। इससे बहुत बहुत हमारा उत्तर बहुत क्लियर होता है कि यह घटना हमारे इसी ब्रह्मांड की थी, क्योंकि चतुर्मुख ब्रह्मा आए थे और इसी ब्रह्मांड में पृथु महाराज की यह लीला घटी थी और चतुर्मुख ब्रह्मा जी पृथु महाराज को कवच देने के लिए आए थे। तो वर्म का अर्थ होता है कवच। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को कवच प्रदान किया, परंतु उस कवच की विशेषता क्या है, तो कहते हैं ब्रह्ममयम। ये कवच कोई साधारण कवच नहीं था, ये कवच ब्रह्ममय था। ब्रह्ममय का अर्थ क्या होता है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जो हमारे श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार है, ब्रह्ममय का अर्थ करते हुए कहते हैं ब्रह्ममयम वेदमयम वर्म कवचम। कहते हैं ब्रह्ममय का अर्थ होता है वेदमय। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर वेद है, ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच प्रदान किया। हमारे शास्त्र में वेद को ब्रह्म कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वेद जो है साक्षात ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में विष्णुदूत यमदूत को प्रश्न पूछते हैं कि धर्म क्या है, तब यमदूत उत्तर देते हैं वेद प्रणी हितो धर्म, वेदों में जो लिखा है वह धर्म है। यत एतद् विपर्यय, और वेदों का जो पालन नहीं करते हैं उसे धर्म कहा जाता है। तब विष्णु प्रश्न पूछते हैं तो फिर वेद क्या है, तब यमदूत उत्तर देते हुए कहते हैं वेदो नारायण साक्षात, वेद जो है साक्षात नारायण है, स्वयंभू इति सृष्टम, और वे स्वयंभू है। वेदों को कोई लिखा नहीं है, वेद साक्षात स्वयंभू साक्षात भगवान से प्रकट हुए। और कहते हैं कि वेद जो है वे भगवान के सांस है। रामायण में वर्णन है, गोस्वामी जी कहते हैं जाके वेद श्वास सुति चारी सो हरि पढ़य कौतुक भारी। जब भगवान श्री रामचंद्र गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो उस प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं जाके वेद श्वास सुतिचारी, जिसके सांस से वेद प्रकट होते हैं ऐसे भगवान पढ़ने जा रहे हैं, ये तो बड़े कौतुक की बात है। वेद जो है भगवान के सांस है, भगवान से ही प्रकट होते हैं। और भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान का एक छोटा सा वाहन है जिसका नाम है गरुड़ जी, जिसे हम वाहन रखते हैं मर्सिडीज मारुति इत्यादि, वैसे भगवान गरुड़ जी वाहन के रूप में रखते हैं। और हमारा वाहन जब चलता है तो धुएं के अलावा और कुछ नहीं छोड़ता है, परंतु शास्त्र में वर्णन है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जी जब चलते हैं तो तब उनके पंख से साम वेद की ध्वनि निकलती है। क्षमा कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा भगवान के वाहन से जब साम वेद की ध्वनि निकलती है तब वेद भगवान से प्रकट हो, इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वेद जो है वे साक्षात भगवान है, इसीलिए वेद को शास्त्र को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। साक्षात ब्रह्म ही है ये भागवत या गीता, ये जितने भी वेद और शास्त्र है साक्षात भगवान है। इसलिए हम जब भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भागवत के श्लोकों के करीब जाते हैं, तब हमें बहुत सुख और आनंद का अनुभव होता है। श्री राधा राजबिहारी भगवान की, श्री गौर निताय की, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज की, श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रमानंदे। तो वेद जो है साक्षात ब्रह्म है, और जैसे ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण परम आनंदमय है, भगवान का कृष्ण का अर्थ ही होता है कृषि भूवाचक नत्र निवृत्ति वाचक तयरेक्यो पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। क्रीका कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जैसे कृषि उद्योग होता है, कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और अण का अर्थ होता है आनंद, जिससे नित्य निरंतर आनंद ही उत्पन्न होता रहे उसे कृष्ण कहा जाता है। तो ऐसे कृष्ण के बाजू में यदि कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो वह भी आनंदित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह शास्त्र यह वेद भी कृष्णमय है, ब्रह्ममय है, साक्षात ब्रह्म है। इसलिए शास्त्र के करीब कोई चला जाता है, शास्त्र के भागवत के श्लोकों का आस्वादन करता है, तो निश्चित भगवान के बाजू में बैठने से जितना आनंद आता है उतना ही आनंद भागवत और गीता पढ़ने से आता है। तो यहाँ पर ब्रह्ममयम शब्द कहा गया है, इसका अर्थ है वेदमयी। ब्रह्म का अर्थ वेद होता है, और सभी वेद और शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि आगे कह रहे हैं ब्रह्ममयम वर्मम, कहते हैं वेदमयी कवच प्रदान किया। कवच का अर्थ आप जानते हैं प्रोटेक्शन, जैसे कर्ण के पास जब तक कवच था तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था, वैसे ये वेद और शास्त्र एक कवच है, प्रोटेक्शन है। और जो व्यक्ति वेद और शास्त्र को जान लेता है, धारण कर लेता है, फिर उसके बाद उस व्यक्ति को कोई नहीं मार सकता है। अब जानते हो कि यह वेद और शास्त्र का सार है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्प तरुण गलितम फलम सुख मुखादय अमृत द्रव संयुतम, कहते निगम कल्प तरु समस्त वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो यह श्रीमद् भागवतम यदि कोई श्रवण कर लेता है तो उनके शरीर पर एक कवच धारण हो जाता है, और भागवत श्रवण करने वाले को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता है, वह अजर अमर हो जाता है। प्रसिद्ध घटना आप सब लोग जानते हो, और भागवत धारण करके शिव जी शिव बने हैं, अमर बने हैं। शास्त्र में पुराणों में कथा आती है कि इस समय की बात, शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ, और विवाह के कुछ दिन बाद शिव जी कुछ काम के लिए बाहर गए थे, और उस समय नारद मुनि पधारे। नारद मुनि पधार कर पार्वती जी से कहते हैं कि आपकी घर गृहस्थी कैसे चल रही है, ठीक तो चल रही है? पार्वती जी ने कहा बहुत ठीक चल रही है। नारद मुनि ने कहा कि आपस में एक दूसरे के बीच में कोई पर्दा तो नहीं है? कोई पर्दा नहीं है, मेरे प्रभु मुझे सब बात सारी बातें बताते हैं, और मैं भी मेरे प्रभु को अपनी सारी बात बताती हूँ। नारद मुनि ने कहा अच्छा, अच्छा तो आपके पतिदेव अपने गले में जो माला धारण किए हैं, उस माला के बारे में कुछ जानते हो? कहाँ से लिए हैं, कहाँ से पहने हैं, कब पहने हैं? पार्वती जी ने कहा कि वे तो मैं नहीं जानती हूँ। कहते इतने दिनों से आप दोनों एक साथ रहे हो, आपके पतिदेव गले में कौन सी माला पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, यह नहीं जानते हो? बस पार्वती जी को क्रोध आ गया और नारद मुनि अपना काम करके वहां से चले गए। शिव जी शाम को घर पर आए, घर पर आए तो देखा देवी जी का मूड बहुत खराब है। शिव जी ने कहा, देवी बताओ क्या हुआ, क्यों क्रोधित हो? तो पार्वती जी ने इतना ही कहा कि इतने दिन से आप अपने गले में इतने सुंदर सोने का चेन पहने हो, कौन सी दुकान से लिए हो, किसने गिफ्ट किया यह भी नहीं बताए। वास्तव में सोने का चेन नहीं था, मुंड की माला थी शिव जी के गले में, कई सारे मुंड अर्थात खोपड़ी की माला पहनी हुई थी। पार्वती जी ने कहा कि आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि ये खोपड़ी की माला आप क्यों धारण करते। तब शिव जी ने कहा कि देवी क्या आपको मुझ पर शक हो रहा है? पार्वती जी ने कहा कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, परंतु फिर भी आपने मुझे यह बात नहीं बताई, निश्चित आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। तब शिव जी ने कहा कि देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद तुम्हारी खोपड़ी की माला में तुम्हारे यादगार के रूप में धारण करता हूँ। देवी देखो जितनी खोपड़ी मेरे गले में है उतनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है और उतनी बार तुम मर चुकी हो। तब पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि प्रभु मैं इतनी बार मर चुकी हूँ और आप एक भी बार नहीं मरे, ऐसी कौन सी चीज आपके पास है कि मुझे मरना पड़ता है बार बार और आप केवल जीवित ही रहते हो? तब शिव जी ने कहा कि ब्रह्ममयम, मेरे ऊपर ब्रह्ममय वेदमय कवच है, मैं अमर कथा जानता हूँ, अमर कथा और कोई नहीं है, भागवत कथा ही है। तब पार्वती जी ने प्रेम से कहा कि प्रभु क्या आप मुझे प्रेम नहीं करते हो? शिव जी ने कहा भगवान के बाद यदि किसी से प्रेम करता हूँ तो तुमसे करता हूँ। अब आजकल के पतियों को यह कहना पड़ता है, यदि नहीं भी करते हैं फिर भी कहना पड़ता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा तो आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं होता है कि आप भी अमर रहो और मैं भी अमर रहूं? शिव जी ने कहा तो प्रभु आप भी मुझे वह अमर कथा सुना दीजिए ना। शिव जी ने कहा देखो यह अमर कथा सुनने के लिए योग्य पात्र चाहिए, योग्य स्थान चाहिए, योग्य समय चाहिए। पार्वती जी ने कहा नहीं मुझे आप सुनाओ। शिव जी ने कहा कि योग्य समय आने पर सुनाऊंगा। पार्वती जी ने बहुत जिद पकड़ी और अंत में कुछ दिन के बाद शिव जी पार्वती जी को लेकर अमरनाथ में गए। पुराणों में यह कथा है कि अमरनाथ में जाकर शिव जी ने अपना डमरू बजाया और इस डमरू से अमरनाथ में रहने वाले सभी जीवों को भगा दिया, क्योंकि यदि कोई जीव यह कथा सुन लेता तो प्रकृति का नियम बदल जाता, इसलिए सभी जीव को वहां से भगा दिया और शिव जी पार्वती जी को यह अमर कथा सुनाना प्रारंभ किए। जब अमर कथा सुनाने लगे तो शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि देखो मैं कथा सुना रहा हूं परंतु सोना मत, क्योंकि अगले जन्म में सोने के कारण ही तुम्हारी मृत्यु हुई है। रामायण प्रारंभ ही होती है एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभजर सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शिव जी कुंभज ऋषि के पास पार्वती जी के अगले जन्म में सती को लेकर गए थे कथा सुनने के लिए और वहां पर सती को नींद आ गई। जब वापस चल लौट रहे थे तो बीच में भगवान श्री रामचंद्र मिले, उनको पहचान नहीं पाई, भगवान की परीक्षा ली और अंत में उसे मरना पड़ा। शिव जी ने कहा कि देखो अगला जन्म प्रवचन में जबकि आने के कारण नींद आने के कारण आपको मरना पड़ा, ये सत्य बात है, प्रवचन में नींद आना ये बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए सभी भक्तों को सतर्क रहना चाहिए यह नींद ना आ जाए। नींद आती है क्योंकि ये नींद जो है कोई साधारण वस्तु नहीं है, कहा जाता है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था और 6 महीने के बाद उसे जगाना पड़ता था, तो ऐसे कुंभकर्ण कुंभकर्ण की पत्नी है और जिसके सिर के ऊपर सवार होती है, चाहे वो इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा क्यों न हो, सबसे बड़ा शक्तिशाली क्यों न हो, सबसे बड़ा वीर भी क्यों न हो, जिसके सिर पर यह आती है तो उसे सुला देती है, लंबा कर देती है। तो नींद बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु यदि हम सतर्क रहे तो इस नींद से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बार बार कहना पड़ता है, जीव जागो गोरा चांद बोले, जगाते हैं महाप्रभु। तो पार्वती को नींद न आ जाए, शिव जी ने सतर्क किया, देखो आप सोना मत, मैं अमर कथा सुनाना प्रारंभ करता हूँ और जब जब मैं यह कथा सुनाता हूँ तो मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। इसलिए जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सोई नहीं हो, तुम सुन रहे हो। इसलिए मैं जब बोलूंगा तो तुम हुंकार देना, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करते रहना। तो शिव जी ने तो प्रारंभ किया, जन्मादस्य तोनो आदि तरत चार्थेषु विज्ञ स्वराते ने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति सूर्य तेज वारी मृदाम यथा विनिमय इत्यादि कथा प्रारंभ की और पार्वती जी हाँ हाँ करते गई। तो कथा सुनाते 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 शिव जी जब बीच भागवत में पहुंचे तब इस पार्वती जी को स्त्री का स्वभाव नींद आ गई, नींद आ गई, यहाँ पर हुंकार बंद हुई। परंतु आश्चर्य की एक बात थी कि शिव जी ने जब अपना डमरू बजाया था तो सभी पक्षी प्राणी वहां से भाग गए थे, परंतु एक तोते का अंडा, तोता उस अंडे को छोड़कर चला गया और डमरू बजने पर वह अंडा फूट गया। उस अंडे से तोते के बच्चे का जन्म हुआ, बेचारे की पंख नहीं होने के कारण वो उड़ नहीं सका। इसलिए वे जिस पेड़ के नीचे शिव जी बैठे थे उसी पेड़ के ऊपर यह तोते का, यह शुक का बच्चा यह कथा सुन रहा था, बहुत ध्यान से यह कथा सुन रहा था। और यह शुक भी कोई साधारण शुक नहीं था, आनंद वृंदावन चंपू या गोपाल चंपू में वर्णन है कि यह शुक श्रीमती राधा रानी का आध्यात्मिक जगत का शुक था। श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण को जब लेटर लिखना होता है, कुछ मैसेज देना होता है, तब राधा रानी इस शुक को कहती है, यह शुक भगवान कृष्ण को जाकर मैसेज देते हैं और कृष्ण का मैसेज राधा रानी को देते हैं। ये वही दिव्य श्रीमती राधा रानी का तोता था और यहाँ पर शिव जी के मुख से अमर कथा सुन रहा था। जब पार्वती सो गई और पार्वती ने हुंकार देना बंद किया तो यह तोता, यह शुक हुंकार देने लगा, हाँ हाँ। इसलिए शिव जी अपनी कथा को कंटिन्यू रखे। जब यह कथा समाप्त हो गई, नाम संकीर्तन यस्य इत्यादि भागवत समाप्त हुआ, शिव जी की आंख खुली तो देखा पार्वती तो सो रही है। पार्वती यदि सो रही है तो शिव जी को प्रश्न उठा, तो अब तक हुंकार कौन दे रहा था, अब तक कौन हुंकार दे रहा था। आजू बाजू में देखने लगे, नजर ऊपर गई तो देखा कि ऊपर बैठा हुआ तोता हुंकार दे रहा था। शिव जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर शिव जी ने अपना त्रिशूल हाथ में लिया, इस त्रिशूल को लेकर जब उस तोते को मारने लगे तो तोता वहां से उड़ गया। कहा जाता है कि तोता आगे आगे, शिव जी अपने त्रिशूल को लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे थे और तोता उड़ते उड़ते अमरनाथ से बद्रीनाथ में आया। ये सब नजदीक करीब में उत्तर भारत में, अमरनाथ में बद्रीनाथ में आया और बद्रीनाथ में बद्री का आश्रम में वेद व्यास जी वहां पर रह रहे थे। और यह तोता उस समय वेद व्यास जी की पत्नी जमाए ले रही थी और यह तोते का बच्चा उड़ते उड़ते वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चला गया और शिव जी उनकी पत्नी के सामने त्रिशूल लेकर खड़े रह गए कि अभी मार दूं। परंतु अब क्या करें, शिव जी क्रोधित है, वे उस तोते को मारने के लिए तैयार है। उसी समय वेद व्यास जी वहां पर आए और शिव जी को कहने लगे कि हे शिव जी, क्या आप इस अमर कथा के प्रभाव को नहीं जानते हो? आप तो जानते हो कि जो व्यक्ति इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है, तो इस तोते ने अमर कथा सुन ली है, इसलिए आप क्या भगवान भी चाहे तो इस अमर कथा सुनने वाले शिव को नहीं मार सकते। यह सत्य बात है कि अमर कथा, ये भागवत कथा जो सुन लेता है वह अमर हो जाता है। सबसे पहले शिव जी इस कथा को सुनकर अमर हुए और दूसरे सुखदेव गोस्वामी, ये शुक इस अमर कथा को सुनकर अमर हुए। मैं इस शब्द पे कह रहा हूं कि ब्रह्म मयम वर्म, ब्रह्मा जी ने एक कवच दिया, वह कवच कौन सा था, कहते हैं ब्रह्ममय वेदमय, और वेदों का सार है, फल है श्रीमद् भागवतम। भागवत जो व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसे एक कवच प्राप्त हो जाता है और उस कवच धारण किए हुए व्यक्ति को कोई नहीं मार सकता। और इसका ज्वलंत प्रमाण है महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित मर चुके थे, 7 दिन में मरने का श्रृंगी ने श्राप दे दिया था, परंतु जैसे ही सुखदेव गोस्वामी के मुख से उन्होंने यह कवच धारण किया, यह वेद, यह शास्त्र, यह श्रीमद् भागवतम धारण किया, सुखदेव गोस्वामी के मुख से यह कवच, यह भागवत धारण करने पर महाराज परीक्षित मृत्यु से बच गए। कहा जाता है कि कवच प्राप्त हो गया और वह तक्षक नाग आए धसे, उसके पहले तो महाराज परीक्षित भगवान के धाम में चले गए। तो वेद का अर्थ होता है ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। वेद ब्रह्म के रूप में है, वेद ब्रह्म ही है, साक्षात भगवान ही है, और वेद का सार है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत जो धारण करता है वह उनके शरीर पर कवच प्राप्त हो जाता है। तो यह श्रीमद् भागवत, यह वेद ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। ब्रह्मा ब्रह्ममयम वर्म, ब्रह्मा जी ने ब्रह्ममयी कवच प्रदान किया। तत्पश्चात कहते हैं भारती हारम उत्तमम, कहते हैं भारती। भारती का अर्थ क्या होता है? वीर राघवाचार्य कहते हैं भारती सरस्वती इति। यहाँ पर भारती का अर्थ है सरस्वती देवी। अच्छा, सरस्वती देवी को भारती क्यों कहा जाता है? तो भारती जो शब्द है इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होता है भा प्लस रति। भा का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, भा का अर्थ होता है भास्कर, सूर्य। और सूर्य की उपमा हमारे वेदों में ज्ञान के साथ की गई है। सूर्य से जैसे नित्य निरंतर अजस अविरत प्रकाश निकलता रहता है, और प्रकाश को हमारे वेदों में शास्त्र में ज्ञान के साथ तुलना किया गया है। प्रकाश को, ज्ञान को प्रकाश कहते हैं और अज्ञान को अंधकार कहते हैं, इसलिए गाते हैं ना ओम अज्ञान्ति निरांधस्य। अज्ञान जो है अंधकार के समान है और ज्ञान जो है प्रकाश के समान है। तो यहाँ पर भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रति का अर्थ होता है जो उसमें रत है, जिसका उसमें प्रेम है। तो जिसका ज्ञान में बहुत प्रेम है, जो ज्ञान से बहुत प्रेम करती है, जो ज्ञान में रत रहती है, उसे भारती कहा जाता है। भा में जो रत है, भा का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान में जो रत है उसे भारती कहते हैं। तो ऐसी ज्ञान में रत रहने वाली भारती सरस्वती ने हारम उत्तमम, उत्तम हार प्रदान किया। ये उत्तम हार कैसा था? श्री वीर राघव आचार्य अपने टीका में लिखते हैं उत्तम महा अर्ह हार। हार कैसा था? हार तो था, फूल से बना हुआ हार था, परंतु उसकी विशेषता क्या थी? तो कहते हैं अर्ह हार। मैं कल बहुत सोचा ये अर्ह का अर्थ क्या होता है, आधा पौना घंटा सोचा अर्ह का अर्थ क्या होता होगा, क्योंकि ये सारी टीका केवल संस्कृत में है। परंतु वो प्रसिद्ध श्लोक जब मुझे याद आया, यथा तरो मूल निशेच नैन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। वहां पर अर्ह शब्द आया है, वहां पर अर्ह का शब्द है पूजा। और यहाँ पर कहते हैं हार की पहली विशेषता कहते हैं कि वह पूजित था। यह हार भगवान के द्वारा पूजित था, अर्थात सरस्वती देवी ने पृथु महाराज को जो हार पहनाया वह हार सबसे पहले भगवान को पहनाया गया था। इसीलिए इस हार की दूसरी विशेषता कहते हैं महाहार। ये भगवान का महाप्रसाद था, महाअर्ह हार। ये फूलों का हार जब हम दुकान से लाते हैं तो केवल हार होता है, परंतु जब ये भगवान के गले में और भगवान के चरणों में जाता है तब ये महाप्रसाद बन जाता है। और जब ये हार भगवान के गले में, भगवान के चरणों में जाकर किसी भक्त के गले में जाता है तब ये महा महाप्रसाद बन जाता है। तो यहाँ पर वीर राघवाचार्य कहते हैं महाअर्ह हार उत्तमम। यहाँ पर मैत्री जी उत्तम हार क्यों कह रहे हैं? यह हार उत्तम इसलिए है क्योंकि यह हार भगवान के गले में लगा है, और भगवान के गले में लगने के बाद पृथु महाराज के गले में लगा है। तो भगवान का जो प्रसाद है इसलिए उसे उत्तम हार कहा जाता है। तो ब्रह्मा ब्रह्म मयम वर्म भारती हारम उत्तमम, भारती सरस्वती ने उत्तम हार प्रदान किया। और हरि सुदर्शनम चक्र, और भगवान हरि ने, हरि के बहुत अर्थ होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेका अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि के बहुत अर्थ हैं, परंतु हरि के दो मुख्य अर्थ हैं। सबसे पहले हरि का अर्थ होता है सर्व अमंगल हरे, जो सभी अमंगलों को हर लेते हैं, सभी कष्ट को, सभी दुख और सभी पाप को हर लेते हैं, उसे हरि कहा जाता है। अर्थ में हरि का अर्थ ही होता है हरना, और उसको दूसरी भाषा में, संसार की लौकिक भाषा में चुराना कहते हैं। जो चुराता है, जो हरता है, इसे हरि कहते हैं। और हमारे हरि, हमारे भगवान तो चुराने में एक्सपर्ट है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रज वृंदावन में, गोकुल में मक्खन चुराते थे, इसलिए सब लोग माखन चोर कहते हैं। और एक भक्त तो बहुत सुंदर गाते हैं कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, हमारे ब्रज में एक प्रसिद्ध चोर आया है। अरे चोर की क्या बात की जाए, चोर तो हमने बहुत देखे हैं इस संसार में। चोर होते हैं, किसी का धन चुरा लेते हैं, किसी की गाड़ी चुरा लेते हैं, तो किसी के कपड़े चुरा लेते हैं, तो किसी के गहने चुराते हैं। संसार में चोर तो बहुत देखे हैं, परंतु हमारे ब्रज वृंदावन में जो चोर आया है, ये तो अद्भुत है। क्यों? क्योंकि ये किसी का टीवी या किसी का घर या किसी का बंगला गाड़ी चुराने वाला चोर नहीं है। हमने यहाँ तक चोर देखे हैं कि किसी की किडनी भी चुरा लेते हैं। आजकल के सोफिस्टिकेटेड चोर किसी की किडनी चुरा लेते हैं, परंतु हमारे ब्रज में जो चोर आया है वे तो हृदय ही चुरा लेता है। और उसमें भी श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चोराग्य क्रमणम पुरुषम नमामि, इसने श्रीमती राधा रानी का हाथ ही चुरा लिया है, इसलिए ये चोर नहीं, ये तो चोरों का सरदार है। इस चोर के सरदार को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। हरि शब्द के ऊपर कहते हरि का अर्थ होता है चोर। और इस भक्त ने बहुत सुंदर लिखा है कि ये चोर इतना अद्भुत चोर है कि इस चोर की टीम में जो शामिल हो जाता है, ये चोर की टीम बहुत बड़ी है, और इस चोर के संगठन में, इस चोर की टीम में जो शामिल हो जाता है, फिर तो वह न तो घर न तो किसी घाट का रहता है, दर दर भटकते रहता है। यह सत्य बात है। यदि कोई व्यक्ति इस चोर की, भगवान की टीम में शामिल हो जाता है, तो कभी मथुरा, तो कभी वृंदावन, तो कभी जगन्नाथपुरी, केवल तीर्थाटन करके घूमता ही रहता है। और इतना ही नहीं है, इतना अद्भुत चोर है कि इस चोर का एक बार भी अपने मुंह से नाम लिया जाए तो अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्य गमनम पुरुषम नमामि, ये अनेक अनेक जन्मों के पाप को हर लेता है। और एक भक्त तो इस चोर हरि को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस संसार के सबसे बड़े चोर हो, क्योंकि हृदय चुराने वाला इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है। और निश्चित है आप चोर हो तो आपको पकड़ने के लिए भी कई लोग लगे होंगे आपके पीछे। तो चोर जो होता है वे अंधकार ढूंढता है, अंधेरे में छिपने के लिए जगह ढूंढता है। तो चोर जो होता है वे अंधकार ढूंढता है, तो प्रभु आपको छिपने के लिए आप जगह ढूंढते होंगे, तो प्रभु आपके छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह मेरा हृदय है, क्योंकि मेरे हृदय में अनंत अनंत जन्मों से अज्ञान रूपी अंधकार है। तो आप इस अज्ञान रूपी अंधकार में छिप जाइए ताकि कोई आपको ढूंढ न सके। भक्तों के सुंदर सुंदर भाव होते हैं। तो इस प्रकार भगवान का एक नाम है हरि, हरि हरति इति हरि, जो सब कुछ हर लेते हैं और सभी लोगों के कष्ट पाप को हर लेते हैं, और हरने के साथ साथ मन भी हर लेते हैं। कहते हैं कि अपनी लीला से वे सभी के मन को हर लेते हैं। तो ऐसे हरि सुदर्शनम चक्रम, अच्छा ये हरि कौन है? भगवान से, हरि शब्द से भगवान के कई स्वरूप का बोध होता है। एक तो साक्षात हरि जो भगवान के रूप में प्रकट हुए, गजेंद्र का उद्धार किए, कृष्ण को भी हरि कहा जाता है, विष्णु को भी, नारायण को भी हरि कहा जाता है। यहाँ पर किस हरि का बोध हुआ है? तो वीर राघव आचार्य लिखते हैं हरि उपेंद्र इति, यहाँ पर हरि का अर्थ है उपेंद्र। भगवान वामन को उपेंद्र नाम दिया गया था। तो यही समझिए कि भगवान वामन यहाँ पर प्रकट हुए और हरि प्रकट होकर सुदर्शनम चक्रम प्रदान किए, सुदर्शन चक्र प्रदान किए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र नहीं दे दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान बिना सुदर्शन चक्र के हो गए। इस बात को वीर राघव आचार्य बहुत सुंदर भाव देते हुए अपने टीका में लिखते हैं कि यदा पृथो भगवत अंश अनुप्रविष्ट, पृथु महाराज का जब जन्म हुआ, पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, तो पृथु महाराज का जब जन्म हुआ, यदा पृथो, यदा जब पृथु महाराज का जन्म हुआ, भगवत अंश अनुप्रविष्ट, तब भगवान का अंश पृथु महाराज में प्रवेश हुआ। शक्त्यावेश अवतार का अर्थ होता है कि भगवान किसी जीव में अपनी शक्ति निवेदित करते हैं। शक्त्यावेश अवतार जो होते हैं वे जीव तत्व होते हैं, वे ईष्ट तत्व नहीं होते हैं, या तो अवतार तत्व नहीं होते हैं। किसी जीव तत्व में भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, उसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। जब पृथु महाराज में भगवान अपने अंश के रूप में प्रकट हुए, तो उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र भी अपने अंश के रूप में पृथु महाराज में प्रकट हो गया। तो भगवान पृथु महाराज में अपने अंश के रूप में प्रकट हुए, तो सुदर्शन भी अपना अंश के रूप में प्रकट हुआ। मूल जो सुदर्शन चक्र था वह तो भगवान के पास ही रहा। कहते तत् इदम चक्रम अपि सुदर्शनम अंशेन प्रविष्टम इति भाव। तो सुदर्शन चक्र अपने अंश के रूप में पृथु महाराज के पास आया। तो इस प्रकार से हरि ने सुदर्शनम चक्र, भगवान हरि ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। और तत्पत्निया व्याहताम श्रियम, और तत्पत्नी अर्थात भगवान हरि की पत्नी श्री ने, तस्य पत्नी हरे पत्नी लक्ष्मी, तस्य भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी ने श्रियम, श्रियम का अर्थ होता है संपदम, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वरूप, सुंदरता और ज्ञान और धन प्रदान किया। भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने धन प्रदान किया। वह धन कैसा था? तो बाल प्रबोधिनी में सुखदेव जी लिखते हैं कि व्याहताम व्याहति अपत रहिता अक्षयाम। वह धन व्याहताम, यहाँ पर व्याहता शब्द आया है कि इस संसार में जो धन होता है वह धन शाश्वत नहीं होता है। वह धन एक ना एक दिन संसार के किसी व्यक्ति से छूट जाता है, और यदि वह धन नहीं छूटा तो वह व्यक्ति उस धन को छोड़कर चला जाता है। वह धन अक्षय नहीं होता है, उस धन का क्षय होते रहता है। वह धन धीरे 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 खर्च होता रहता है, और खर्च होने में उस धन का क्षय होता है। परंतु लक्ष्मी जी ने जो धन दिया, कहते हैं अव्याहताम, अव्याहताम का अर्थ होता है क्षय तत् रहिता अक्षयाम। लक्ष्मी जी ने जो धन दिया वह अक्षय था, उसका क्षय कभी नहीं होता है। मान लीजिए पृथु महाराज को 1,00,000 रुपया दिया हो, और उसमें से पृथु महाराज एक दिन 10,000 रुपया यूज करते हो, फिर भी वह लाख का लाख ही बना रहता था, वह कम नहीं होता था। अक्षय धन प्रदान किया, जो कभी नाश न हो, कभी कम न हो। ये सत्य बात है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, तो भगवान उसे धन प्रदान करते हैं। और भगवान जब धन प्रदान करते हैं तो वह धन अक्षय होता है, और हम हमारे प्रयास से जो धन प्रदान करते हैं वह क्षय होता है, वह बहुत कम दिनों में उसका क्षय हो जाता है। तो लक्ष्मी जी ने धन दिया है, यहाँ पर लक्ष्मी जी धन दे और हम लक्ष्मी जी को ले, उसमें बहुत अंतर है। इस संसार में सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु नारायण को नहीं चाहते हैं। परंतु एक बात सबको याद रखनी चाहिए कि लक्ष्मी जी पतिव्रता नारी है, वे अपने पति को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी जी को लेकर अपने घर पर आ भी जाता है तो बहुत दिन तक नहीं टिकती। परंतु जिसके पास नारायण आ जाते हैं, जो नारायण की भक्ति करते हैं, तो नारायण जहाँ पर चले गए वहां पर पीछे पीछे पतिव्रता होने के कारण लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे जाती। तो जहाँ पर नारायण की पूजा होती है, भगवान की भक्ति होती है, वहां पर लक्ष्मी जी शाश्वत काल के लिए रहती हैं। शयत इंदिरा शश्व दत्त रही। गोपी गीत में गोपिया गोपी गीत के प्रथम श्लोक में यह गाती है कि हे कृष्ण, जिस दिन से आपका ब्रज वृंदावन में गोकुल में जन्म हुआ है, उस दिन से यहाँ पर लक्ष्मी जी शाश्वत काल के लिए वास करती है। कहते जयति तेदि कम जन्म ना व्रज शयत इंदिरा शश्व दत्त रही दैत दृश्यताम दिश्युतावकाश त्वयि घृतासव त्वाम विचिन्वते। तो जहाँ पर भगवान होते हैं वहां पर लक्ष्मी जी होती हैं। तो आज के इस श्लोक का भाव यही है कि पृथु महाराज जन्म लिए हैं और जन्म लेकर सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच प्रदान किया, सरस्वती जी ने भगवान की प्रसाद माला हार प्रदान किया, हरि भगवान हरि ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया और भगवान श्री हरि की पत्नी लक्ष्मी जी ने धन और सुंदरता और ऐश्वर्य प्रदान किया, ऐसा ऐश्वर्य जिसका कभी नाश न हो। इस प्रकार से आज का श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ साथ आज का जो दिन है परम पवित्र दिन है, क्योंकि आज के दिन श्यावानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ है, आज ही के दिन वंशी वरन ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ है, आज ही के दिन बलराम रथ यात्रा और कृष्ण वसंत यात्रा, ये चारों की लीला अद्भुत है। समय बहुत कम है इसलिए केवल श्यावानंद प्रभु के बारे में मैं एक लीला श्रवण करा दूं। इनकी लीला भी अद्भुत है। इनका जब जन्म हुआ उसके पहले कई सारे संतान मर चुके थे। इनकी माता का नाम दूरिका था और पिता का नाम कृष्ण मंडल था। और इनका जन्म संवत 1591 में हुआ था और जन्म से ही ये वैराग्यशाली थे। और इनका जन्म कई संतानों की मृत्यु के बाद हुआ, इसलिए गांव वालों ने दूरिका और कृष्ण मंडल इनके माता पिता को कहा कि आप एक काम करो, अपने पुत्र का नाम दुखी रखो, क्योंकि दुखी रखने से ये जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि दुखी तो ऑलरेडी मरा हुआ होता है, आगे चलकर यह मरेगा नहीं। इनका नाम दुखी रखा गया और इनका बाल्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। कहते हैं कि जब गुरुकुल में सब लोग बढ़ते थे और फ्री पीरियड होता था, सब बालक खेलने कूदने में रत रहते थे, परंतु यह दुखी कभी भी खेलने कूदने में ध्यान न देते हुए चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की कथा सुनने में ध्यान देते थे। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कथा सुन सुनकर उनके हृदय में वैराग्य उमड़ा और 20 साल की आयु में उन्होंने सोचा कि मैं घर छोड़कर निकल जाऊंगा और केवल भगवान की भक्ति करूंगा। 20 साल की आयु में यह दुखी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर, कहते हैं गोविंद घोष के एक शिष्य थे जिसका नाम था हृदय चैतन्य दास, और यह हृदय चैतन्य दास अंबिका कालना में रहते थे। और यह दुखी 20 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर हृदय चैतन्य दास के पास आया और वहां पर उनसे दीक्षा प्राप्त की। हृदय चैतन्य दास ने कहा कि मैं आपको हरिनाम दीक्षा दे रहा हूँ, आपका नाम नहीं बदल रहा हूँ, केवल आपके नाम के पीछे कृष्ण दास लगा रहा हूँ। इसलिए हरिनाम दीक्षा के बाद उनका नाम हुआ दुखी कृष्ण दास। दुखी कृष्ण दास को दीक्षा प्रदान की और दीक्षा देकर कहा कि आप एक काम करो, इस भारत भूमि में बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ है, तीर्थ यात्रा में परिभ्रमण करो। ये दुखी कृष्णदास मायापुर जगन्नाथपुरी इत्यादि परिभ्रमण करते करते 84 कोस वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में सबसे पहले श्याम कुंड राधा कुंड में गए। और जैसे ही वहां पर पहुंचे उसके आंखों से अजय सविरत अश्रुधारा निकलने लगी, अष्ट सात्विक युकार होने लगे, रोंगटे खड़े होने लगे। श्याम कुंड राधा कुंड में स्नान किया और उन दिनों वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे। ये दुखी कृष्णदास रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में गए और कहा कि मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि आप एक काम करो, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी रह रहे हैं, आप जीव गोस्वामी के अंदर में रहो। देखिए भक्तों की लीला से, हमारे आचार्यों की लीला से बहुत कुछ उपदेश लेने जैसा है। यहाँ पर दुखी कृष्णदास कह रहे हैं कि हे रघुनाथ दास गोस्वामी, आप मुझे अपने चरणों में रखिए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मेरे चरणों में नहीं, आप जीव गोस्वामी के चरण में रहिए। ये वैष्णव का स्वभाव होता है। आजकल कैसी स्थिति है, आजकल के भक्त यह सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी ही शरण में आए, परंतु वैष्णव का स्वभाव होता है कि वे दूसरे के चरणों में भेजते हैं, क्योंकि प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध सही मान मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध, जहाँ पर वास्तविक प्रेम होता है, जिसके हृदय में वास्तविक भक्ति होती है, वे तो यही सोचते हैं कि मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की गंध भी नहीं है। तो ये भक्तों का स्वभाव है, वे ज्यादा से ज्यादा डिसेपल बनाना नहीं चाहते हैं, न जन्म न धनम न सुंदरी, वे ज्यादा से ज्यादा अनुयायी नहीं चाहते हैं, वे दूसरों के अंदर में भेजते हैं। वैष्णव भक्तों का स्वभाव है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के पास भेज दिया और कहा कि आप उसके अंदर में रहना। तो यदुखी कृष्णदास जीव गोस्वामी के पास गए, उनके अंदर में रहने लगे और जीव गोस्वामी से भक्ति तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। और उन दिनों वहां पर श्याम सुंदर जी का विग्रह था और रोज सुबह प्रतिदिन ये दुखी कृष्णदास श्याम सुंदर के विग्रह की सेवा करते थे और इतनी अच्छी तरह से सेवा करते थे, इतनी अच्छी तरह से सेवा करते थे, जगत को आनंद देने वाले भगवान श्याम सुंदर इस दुखी कृष्णदास की सेवा से आनंदित होते थे। जीव गोस्वामी ने देखा कि इनकी सेवा से श्याम सुंदर आनंदित होते हैं, इसलिए जीव गोस्वामी ने इनका नाम ही रख दिया श्यामानंद दास। श्याम आनंद, जो श्याम को आनंद देने वाले हैं, इसलिए दुखी कृष्ण का दास का नाम रख दिया श्यामानंद, श्यामानंद प्रभु। और ये नित्य प्रतिदिन श्याम सुंदर की सेवा करते थे और जहां पर सेवा करते थे उनके बाजू में ही जहां पर भगवान की नित्य रास लीला होती है सेवा कुंज निधि वन में, जो आज भी भगवान श्री श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास करते थे, वहां पर इनकी सेवा झाड़ू लगाने की थी। आप सब याद कीजिए सेवा कुंज, जहां पर छोटे छोटे पौधे हैं। तो ये श्यामानंद प्रभु वहां पर रोज शाम को झाड़ू लगाते थे और सुबह उठकर देखते थे तो जैसे भगवान श्री कृष्ण आए हो, राधा रानी आए हो और रास लीला करके गए हो, वैसे उनके चरण के चिन्ह देखे जाते थे। और यहाँ तक कि शाम को जो बेड सजा कर रखा जाता था, सुबह खोलकर देखते थे तो वो बेड बिल्कुल बिखरा हुआ था, सिंदूर उनकी चूड़िया व सब कुछ बिखरी हुई रहती थी। इसका अर्थ यही था कि वहां पर भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आते थे और शयन करते थे। आज भी वो लीला होती है, आज भी आप इस दृश्य को देख सकते हैं। कुछ लोग इस कलयुग में, कुछ लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, ये लोग रात को जाकर देखने का प्रयास किए परंतु सुबह खोलकर देखा तो वे मृत देह उनका मिला, वे मरे हुए देखे गए। इसका अर्थ है कि भगवान आज भी लीला करते हैं। एक समय की बात, श्यामानंद प्रभु ने वहां पर रात को झाड़ू लगाया और वे दरवाजा बंद करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी सब लोग लीला करने के लिए, रास करने के लिए आए, परंतु हुआ ऐसा कि जब ये रास कर रहे थे और रास करके जब सुबह होने लगी तो सब लोग दौड़कर जाने लगे और जाते जाते श्रीमती राधा रानी के चरणों से वह नूपुर गिर गया और सब लोग चले गए। आधे रास्ते में पहुंचे तब पता चला कि राधा रानी नूपुर वहां कुंज में भूल गई है। जब राधा रानी ने ललिता सखी को भेजा के जाओ वो मेरा नूपुर लेकर आओ, उस समय ये श्यामानंद प्रभु दरवाजा खोल चुके थे, झाड़ू मारने के लिए तैयार हो गए थे, वो झाड़ू मारते मारते उसे वह नूपुर मिला। उसी समय ललिता सखी वहां पर पहुंची और कहा कि लाओ ये मेरा नूपुर है, मुझे वापस दे दो। श्यामानंद प्रभु ने कहा मैं नहीं दूंगा। श्यामानंद प्रभु ने कहा कि आपके दोनों पांव में नूपुर है, आप कैसे कह सकते हो कि ये आपका नूपुर है। तो ललिता सखी ने कहा कि ये मेरा नहीं, ये राधा रानी का नूपुर है। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कृष्ण भक्त तो चतुर होते हैं। श्यामानंद प्रभु ने इतना ही कहा कि जिसका नूपुर है वो यहाँ पर आएंगे तो ही मैं उसे नूपुर दूंगा, जिसका नूपुर है वो मेरे हाथ से आकर लेकर जाए। नहीं माने तो ललिता सखी गए और श्रीमती राधा रानी को कहा कि देवी अब आपको ही जाना होगा, इतना हठीला भक्त है तो मुझे नहीं दे रहा है, आप जाओगी तो ही वो आपको प्रदान करेगा। तो श्रीमती राधा रानी आई, श्रीमती राधा रानी आई और कहा कि लाओ मेरा नूपुर दो। श्यामानंद प्रभु ने कहा कि नूपुर तो दूंगा परंतु एक शर्त है, ये नूपुर मैं अपने हाथों से आपके चरण में पहनाऊंगा। इस संसार के हजारों लाखों लोग गला फाड़ फाड़ कर मर जाते हैं राधा तेरे चरणों की कब धूल मिले, परंतु श्यामानंद प्रभु ने श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए यह शर्त रखी कि आपके चरणों में मैं अपने हाथ से नूपुर पहनाऊंगा। राधा रानी ने कहा चलो पहना दो। श्यामानंद प्रभु ने ये नुपुर क्या पहनाया, राधा रानी के चरणों से कृपा प्राप्त कर ली, शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, अनुग्रह प्राप्त कर लिया। और उस समय श्रीमती राधा रानी वहां से भाग कर जा रही थी तो उनका चरण जो था नुपुर पहना हुआ चरण श्यामानंद प्रभु के कपाल में मस्तक में लग गया और राधा रानी चली गई। कहा जाता है कि वह जो चिन्ह है श्यामानंद प्रभु के जीवन भर वह चिन्ह उनके मस्तक पर रहा। और वह चिन्ह क्या, श्यामानंद प्रभु ने उस चिन्ह को अपना तिलक ही धारण कर लिया। और कहा जाता है कि श्यामानंद प्रभु के वंशज आज भी है, श्यामानंद प्रभु के वंश में जितने भी लोग आए ये सब लोग वैसा ही तिलक करते हैं जो राधा रानी ने उसको चोट दी थी। और आज भी श्यामानंद प्रभु के परिवार के लोग ही वहाँ सेवा कुंज निधिवन में झाड़ू लगाते हैं इत्यादि वह कारोबार करते हैं। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु की भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ कई लीला है। फिर वे जगन्नाथपुरी से नरसिंहपुर में गए, वहां पर उन्होंने गोविंद देव के मंदिर का स्थापना किया, वहां के कई लोगों को भक्त बनाया। और फिर संवत 1687 में श्यामानंद प्रभु भगवान के नित्य धाम में नित्य लीला में प्रवेश किए। इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु की छोटी सी जाति है। और भी आज के दिन में बलराम रथ यात्रा, बलराम जी ने आज के दिन रास लीला की थी, द्वारका से आए थे, वह प्रसिद्ध राम घाट यमुना को दो भाग में बांटा था। तो आज के दिन में बहुत बहुत लीलाएं हुई हैं, हम सबको भक्त के मुख से यह श्रवण करना चाहिए। और आज के दिन भगवान की इस नित्य लीला में, भगवान के भक्तों की लीला में हम सबको रहना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न का समय है प्रभु जी, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। ऐसे बोलते हैं कि यमराज जो है वो धर्मराज है।
हाँ।
तो यहाँ पर श्लोक में बताया है कि धर्मराज भी कुछ गिफ्ट भी है और जमराज भी दिए।
हाँ।
तो ऐसे प्रतीत होता है धर्मराज और जमराज जो है प्रकोट में लिखा है, धर्मराज कुछ गिफ्ट दिए, जमराज कुछ दंड वगैरह दिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये धर्मराज और जमराज जो है वो दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं, तो उसको थोड़ा स्पष्ट करें।
हाँ हाँ। इंद्र क्रीट मुत्कृष्टम दंडम संयम मन यम, आप इसके ऊपर कह रहे हैं यमराज। यहाँ पर तो यमराज ही लिखा है ब्रो।
नहीं, उसके बाद में शायद आएगा, वो धर्मराज भी कुछ गिफ्ट देते हैं आके।
यमराज
एक चित्र में दिखा गया है, उसमें चित्र है,
उसमें लिखा है।
अच्छा,
मैंने अगला श्लोक पढ़ा नहीं है।
ऐसा भी देखा जाता है महाभारत में।
हाँ।
जो विदुर है।
हाँ।
वो यमराज का इंकार्नेशन है।
हाँ।
और युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्मराज का है।
हाँ।
और जब विदुर जी शरीर त्याग करते हैं तो युधिष्ठिर के आंखों के माध्यम से उसमें एकाकार हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है।
अच्छा,
तो उसको किस समझे की
इस बात को तो मैं नहीं जानता हूँ। मेरा प्रश्न कथा से विपरीत है। जो हम एकादशी के दूसरे दिन पारणा का समय करते हैं उस समय क्या उसका महत्व है कि उसी समय में छोड़ना है, क्या क्यों उसका दूसरा अलग समय नहीं है क्या?
बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डायरेक्ट स्वीकार करनी होती हैं। जैसे मैं अक्सर सबको कहता हूँ 2+2 कितना होता है, 4, 5 क्यों नहीं होता है, 2+2 4 ही होता है। वैसे पारण के समय ही हमें वो खोलना चाहिए। और इसकी महत्ता बताते हुए भागवत के नवम स्कंद के प्रारंभ में ही वर्णन है अम्बरीश महाराज की कथा कि पारण के समय एकादशी तोड़ना उसका एक अपना महत्व होता है। तो एक सिद्धांत है, सिद्धांत में कुछ रीजन हो सकता है कि कोई रीजन न हो या हम नहीं जानते हैं, परंतु पारण के समय एकादशी तोड़ने से ही उन एकादशी का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। और भागवत इसका प्रमाण है कि अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत किए थे, पारण का समय हो चुका था और बहुत बड़ी दुविधा थी कि यदि पारण कर लूं तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाएंगे और यदि नहीं करूं तो मुझे एकादशी का फल नहीं मिलेगा। परंतु वहां पर सभी आचार्यों ने मिलकर यही कहा कि आप एक काम करो, पानी पीकर पारण कर लीजिए, इससे आपका दोनों व्रत रह जाएगा। तो इतना ही हमारे लिए ठीक है कि पारण घटना तो मैं केवल अमरीश महाराज की जानता हूं। शास्त्र का बताइए। हाँ माइक दे।
हरी बोल। इनको तो ब्रह्मा जी की पुत्री कहा गया है, पत्नी कैसे बनती है?
अब यहाँ प्रभुपाद जी अनुहद में तात्पर्य में लिखे हैं। अच्छा हाँ हाँ, इसमें कल्प भेद भी हो सकता है। और मैंने एक आचार्य से यह सुना भी है कि ब्रह्म लोक में जो भी स्त्री का जन्म होता है उसे सरस्वती कहा जाता है। सरस्वती जो है ये किसी का नाम नहीं है, जातिवाचक नाम है। जैसे सूत, सूत जो है ये किसी का नाम नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं है, एक पोस्ट है। इस प्राइम मिनिस्टर में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। वैसे ब्रह्मलोक में कोई भी स्त्री होती है तो उसे सरस्वती कहा जाता है, तो वह भी हो सकता है। ठीक है,
भागवत कथा सुनने वाला अमर बन जाता है। परंतु किस कैसे, ये एक घंटे की पूरा भागवत सुनने के बाद?
नित्यम भागवत सेवया, इसलिए प्रारंभ में ही कहते हैं वेदव्यास जी नित्यम। और इसकी टीका में श्रीपाद सिद्ध स्वामी कहते हैं नित्य का अर्थ क्या होता है? पूरा दिन नहीं, कहते हैं नित्यम भागवत सेवया मृत्यु पर्यंत, पूरा दिन 24 घंटा और मृत्यु पर्यंत। जब भगवान श्री रामचंद्र ने वाल्मीकि को पूछा कि मुझे रहने के लिए कोई योग्य स्थान बताइए, मैं कहाँ पर रहूं, तो वाल्मीकि भगवान कहाँ रहते हैं उसका योग्य स्थान बताते हुए कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके स्थान में कोई व्यक्ति नित्य निरंतर 24 घंटा भगवान की कथा सुनता रहता है और 24 घंटा सुनने के बाद भी वे तृप्त नहीं होता है। हम तो एक घंटा सुनने के बाद कहते हैं बस अब थक गए, 45 मिनट इनफ। और एक ही प्रवचन दूसरी बार यदि सुनाया जाए तो ये तो हमने सुना था, एक ही सुने हम, ऐसा कहते हैं। परंतु नहीं, नित्य बारंबार बारंबार रिपीट करते हुए, नित्य सुनते हुए यदि हम चलेंगे और मृत्यु पर्यंत जब तक आलय प्रलय न आ जाए तब तक ये भागवत सुनने से हम अमर हो जाएंगे। ये निरंतर सुनना चाहिए।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, आपने भी बताया था कि माता पार्वती का, शंकर जी ने बताया कि उनका बहुत जन्म हुआ था, लेकिन पहला जन्म तो उन्हें दक्ष पुत्री पति के रूप से दिया, पति बाद में पार्वती, बाद में और बाकी के जो मुंड वो
आपके मुख से पार्वती निकल गया।
हाँ।
लेकिन उस सती का ही अनेक जन्मों का था, तो दूसरे जन्म में पार्वती।
हाँ,
इनको थोड़ा भ्रम हो गया था इसलिए।
ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री रूपाद की।